अरे चेत रे नर चेत रे थर चिड़िया चुग गई खेत रे नर नुगरा रे यदि अब तो मन में चेत रे तू अब तो दिल में चेत रे यदि अब तो मन में चेत रे हाय अब तो दिल में चेत रे थारे गुरु के नाम से आंटी रे अब पुणे चढ़ावे थारी घाटी रे नर नुगरा रे यदि अब तो मन में चेत रे हाय अब तो दिल में चेत रे हे गुरु के नाम से आती रे अब कूने चढ़ावे थारी घाटी रे नर नुगरा रे यदि अब तो मन में चेत रे हाय अब तो दिल में चेत रे यदि चेत रे नर चेत रे थर चिड़िया चुग गई खेत रे नर नुगरा रे यदि अब तो मन में चेत रे हाय अब तो दिल में चेत रे करम की रेख रे नर नुगरा रे यदि अब तो मन में चेत रे हाय अब तो दिल में चेत रे हे गुरु जी बतावे भेद रे दस छुटे जन्म की कैद रे नर नुगरा रे अब तो मन में चेत रे हाय अब तो दिल में चेत रे अरे चेत रे नर चेत रे थर चिड़िया चुग गई खेत रे नर नुगरा रे अरे अब तो मन में चेत रे हाय अब तो दिल में
ओम शांति। एक सुबह सुबह एक मछुआरा फिशरमैन मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ने के लिए जा रहा था, परंतु सूरज अभी निकला नहीं था, अंधेरा ही था। सुबह सुबह घर से निकल पड़ा रोज की तरह, पर आज थोड़ा जल्दी मछली पकड़ने के लिए। और जैसे जैसे जा रहा था, कुछ तो पैर को लगा, कोई चीज पैर से टकराई और वो गिरने को हुआ। संभाला अपने आप को, देखा तो एक थैली सी है जिसमें पत्थर भरे हैं। उसने इस थैली को ले लिया और जाकर समुद्र तट पर बैठा, इंतजार में कि सूरज उगेगा, प्रकाश होगा, फिर मछलियां पकड़ूंगा। तब तक क्या करता, पत्थर जो थैली में थे वो कंकड़ एक एक निकालने लगा और फेंकने लगा समुद्र पे। समुद्र शांत था, जीवन की समस्याओं के बारे में सोचते सोचते एक एक पत्थर लेता और फेंकता। आवाज आती छपाक, सुबह का सन्नाटा। लगभग सारे पत्थर फेंक दिए, अब बस अंतिम पत्थर फेंक रहा था। तब तक सूरज उगाया, सूरज की नाचती किरणें समुद्र पर पड़ी, उसके हाथों पर पड़ी और देखा तो क्या, वो जो फेंक रहा था वो हीरा। वो जो थैली थी वो हीरो की थैली थी, और अब तक सारे हीरे फेंक चुका था, अब बस एक ही बाकी था। वो हाथ में आ गया, परंतु दुखी होने लगा, पछताने लगा, ये मैंने क्या कर दिया, इतना कुछ मिला था वो सब गवा दिया। परंतु फिर भी एक तो मिला। इस बात का थोड़ा सुख था, अपने आप को सांत्वना दी कि अभी भी सब कुछ नहीं किया, एक तो मिल ही गया। उस मछुआरे को एक तो मिल गया, पर शायद बहुत से ब्राह्मण हैं जिन्होंने एक एक करके वो सारे खजाने, वो सारे रत्न, वो सारे क्षण, वो सारे श्वास जीवन के फेंक दिए और फिर हाथ में कुछ भी नहीं बचा सिवाय पश्चाताप के, सिवाय रोने के। भगवान के महावाक्य है, एक समय आएगा संसार की आत्माएं रोएगी, चिल्लाएगी, तड़पेगी कि भगवान इस धरा पर आया और हमें पता नहीं चला। जार जार रोएगी, दुखी होगी, परंतु उनसे भी ज्यादा दुखी कौन होंगे? वो ब्राह्मण जिन्होंने बहुत कुछ गवा दिया, भगवान आया, भगवान ने सब कुछ दिया, परंतु ले नहीं पाए, झोली फिर भी खाली रह गई और जो झोली में भरा था वो भी फेंक दिया, बर्बाद कर दिया, वो ब्राह्मण खून के आंसू बहाएंगे। संसार के लोग पानी के आंसू बहाएंगे, और वो ब्राह्मण जिन्होंने ईश्वरीय खजाने को नष्ट कर दिया, वो ब्राह्मण रोएंगे, पश्चाताप करेंगे। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, अब है प्राप्तियों का समय, फिर होगा पश्चाताप का समय, अब है खजाने भरने का समय, जो कि 21 जन्मों के लिए भरते हो। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, चार प्रकार के खजाने देखे बाबा ने, किसने कितने जमा किए हैं, कौन कौन से? ज्ञान, शक्तियां, समय और संकल्प। आज बाप दादा ये चार खाते देख रहे हैं, किसने कितना जमा किया है। इन्हीं जमा किए के आधार पर भविष्य 21 जन्म की तकदीर बनेगी। सतयुग त्रेता में राज्य, द्वापर कलयुग में इष्ट बनोगे। कितना अभी किसने जमा किया है उस आधार से, इसलिए जो करना है अब करना है, अब नहीं तो कब नहीं, नाउ और नेवर। इंग्लिश में कहते हैं नाउ और नेवर, इंग्लिश में कहते हैं द टाइम इज नाउ, इस समय, इन दिस मोमेंट लाइज द इटर्निटी, इस पल में एक सदी छिपी हुई है, सारी की सारी सदी, सेंचुरी इस पल में छिपी हुई है। जो कुछ करना है वो अब करना है, अभी करना है। बाबा ने कहा ये स्लोगन जब याद करते हो तो क्या याद होता है, क्या क्या होता है इससे आज की अव्यक्त वाणी? सबसे पहले जो कर्म करते हो वो श्रेष्ठ कर्म तीव्र हो जाते हैं, दूसरा इससे रूहानी जागृति आ जाती है, तीसरा उमंग उत्साह बढ़ जाता है, और चौथा जो साधारण संकल्प है देख लेंगे, कर लेंगे, सोच लेंगे, बाद में देखेंगे, प्लानिंग करेंगे, वो सब समाप्त हो जाते हैं। जागृति, अवेकनिंग, रूहानी जागृति, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जो आत्मा सोई थी वो जाग जाती है जब उसे समय का पता चलता है कि समय बहुत कम है, जो कुछ करना है अभी के अभी करना है। वैसे ही निरंतर समय का चिंतन करना है, कौन सा समय चालू है और मैं क्या कर रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए और कर क्या रहा हूं, क्या वही कर रहा हूं जो करना चाहिए या कुछ और करने में लग गया हूं, नहीं तो फिर पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। और बाप तब धर्मराज के रूप में होगा, कितना भी रो, कितना भी चिल्लाओ, कितना भी माफी मांगो, कुछ नहीं होगा। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के 1977, इन तीन बातों को ब्राह्मण जीवन की रीति रसम नहीं बना देना। कौन सी तीन बातें? 3P, एक पाप करते रहना, करते रहना, करते रहना, बार 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 पाप करते रहना, दूसरा पश्चाताप, पाप करना पश्चाताप करना, पाप करना पश्चाताप करना, और तीसरा माफी मांगना, पार्डन। इसको ब्राह्मण जीवन की रीति रसम नहीं बना के रख देना। बार 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 श्रीमत का उल्लंघन, आज फिर अमृत वेला मिस, और फिर बाबा को लेटर, गलती हो गई माफी कर दो। सच्चे दिल से माफी मांगे तो माफी मिल भी जाएगी, परंतु बार 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 बार, और फिर पश्चाताप माफी, पश्चाताप माफी, चक्र है, इसकी आदत पड़ जाती है, सर्कल है, कुचक्र है। एक बार तीव्र पुरुषार्थ की बाबा ने कभी परिभाषा दी है, लिख के रखना है डायरी में। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात एक बार जो गलती की है वो फिर से रिपीट ना हो, यह है तीव्र पुरुषार्थ। आज की मुरली में तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा, अब नहीं तो कब नहीं, यह है तीव्र पुरुषार्थ। सेकंड डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन तीव्र पुरुषार्थ की, 21 जनवरी 1969, अव्यक्त मुरली। समय पर ज्ञान, ज्ञान बहुत सुना, समय पर ज्ञान याद आ जाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थ की अगली परिभाषा किसी और अव्यक्त मुरली में आई, एक सेकंड पहले जो स्थिति थी उससे अब की स्थिति आगे हो, यह है तीव्र पुरुषार्थ। एवरी टुडे शुड फाइंड अस अहेड ऑफ यस्टरडे, Every tomorrow should find us ahead of today. आज हम कल से आगे और कल हम आज से आगे हो, यह है तीव्र पुरुषार्थ। जो करना है अब करना है, जो करना है आज करना है, अगर अब नहीं किया तो शायद कभी भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि फिर परिस्थितियां विकराल होगी। पुरुषार्थ तब किया जाता है जब जीवन में कोई परिस्थितियां नहीं है, स्थिरता है, तब अपने आप को तैयार करना होता है, जब खाली समय है, फुर्सत है, जीवन दो काल में व्यतीत होता है, एक तो वो समय जब परिस्थितियां है, एक दूसरा समय जब कोई परिस्थितियां नहीं है। जब कोई परिस्थितियां नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, शांति है, तब पुरुषार्थ किया जाता है, तब अपने आप को ज्ञान में परिपक्व किया जाता है। बजाय इसके कि आज छुट्टी है, आज एंटरटेनमेंट, घूमे फिरे और टाइम वेस्ट करे, वही तो समय है तपस्या का। क्योंकि जब परिस्थिति आएगी तब कैसी तपस्या होगी, तब कैसा ज्ञान का चिंतन होगा, तब तो किए हुए ज्ञान को यूज करना होगा, जो ज्ञान चिंतन किया है, मनन किया है। इसीलिए जब जब खाली समय मिले वो समय पुरुषार्थ में लगा देना है, जब जब खाली समय मिले वो समय मुरली के चिंतन में लगा देना है। कल कहा था टोटल 1100 मुरलियां है, 1969 से लेकर 2016 तक अव्यक्तवाणियां। क्या वो सारी अव्यक्तवाणियां हमारी पढ़ के हो गई? अगर नहीं पढ़ के हो गई तो कैसे आराम से बैठ सकते हैं? वो महाराणा प्रताप था, प्रतिज्ञा ली थी, जब तक स्वराज्य नहीं पालू, जब तक अपना राज्य नहीं पालू, नीचे सोऊंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। जब तक मुगलों के साम्राज्य को निकाल ना दूंगा यहां से, अपनी भूमि को फिर से जब तक नहीं पालूंगा, शांति से नहीं बैठूंगा। डिवाइन इंस्पिरेशन की आवश्यकता है। छोटा सा शिवाजी, उसको उसकी मां कहती है, देखो उस किले पर मुगलों का झंडा है, क्या ऐसा हो सकता है वहां हिंदू राष्ट्र का झंडा हो, मराठा साम्राज्य का झंडा हो। और वो छोटा सा बालक प्रेरणा से भर जाता है। जब तक मंजिल को नहीं पालूं, रुकूंगा नहीं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। जब तक मंजिल नहीं मिल जाए नहीं रुकूंगा, कांटे रोंदूंगा, अपनी राह बनाऊंगा। तुम फूलो भरी डगर की बातें किया करो, मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा। तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो, गोताखोर जिसे गहरे जाना है। समय बहुत कम है, जो कुछ करना है वो अब करना है और आज करना है, अभी संकल्प करना है। संकल्प बीज है कर्म का। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आज के आज करनी है, जो अब करनी है, बाद में करेंगे तो पछताना पड़ेगा। तो ऐसी हम लगभग 21 बातें देखेंगे जो कि आज अभी इसी समय करनी है। क्योंकि ये सारी बातें बाद में नहीं कर सकेंगे, बाद में समय नहीं होगा करने का, परिस्थितियां विकराल होगी। एक तरफ 5 विकारों का आक्रमण, माया के 5 खिलाड़ी, दूसरी तरफ प्रकृति के 5 खिलाड़ी, तीसरी तरफ भटकती हुई आत्माओं का प्रकोप, चौथी तरफ पुराने संस्कारों का आक्रमण। ये 4 आक्रमण होंगे। अव्यक्त मुरली है एक, जिसमें बाबा ने ये बताया है, एक साथ 4 तरफ से 4 परिस्थिति आएगी, 5 विकार एक साथ आक्रमण करेंगे, 5 तत्व एक साथ आक्रमण करेंगे, भटकती हुई आत्माएं आक्रमण करेगी, भूत प्रेत, जो अतृप्त होकर जिन्होंने शरीर छोड़ा है, शरीरों को ढूंढेगी। एक साथ 1,00,000 लोग मर गए, कहां जाएगी आत्माएं? प्रवेश करेगी इधर उधर, क्योंकि ऊपर तो अभी जाने का समय नहीं आया है, थोड़े समय के बाद जाना है। तब तक क्या करेगी? भटकेगी, उनका भी वार होगा। और चौथा, जो सबसे कड़ा वार है वो है पुराने संस्कारों का वार। विकराल परिस्थितियां होगी, साइंस के सारे साधन ठप ठप हो जाएंगे। तब क्या करेंगे? क्या तब पुरुषार्थ करेंगे? पुरुषार्थ करने का समय अब है। बीच बीच में रिहर्सल हो रही है, ग्रह युद्ध होगा, तीसरा महायुद्ध होगा, उस समय कुछ भी नहीं कर सकेंगे, घर से ही नहीं निकल सकेंगे। कैसी भट्टी और कैसा मधुबन, निकल ही नहीं पाएंगे। भट्टी करने का समय अब है, तो क्या क्या करना है? पहला, ज्ञान, स्वयं को ज्ञान से भरना है। आत्मा रिक्त हो गई है ज्ञान से, अज्ञान से भरी है। अज्ञानंध तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलकया, ज्ञान के अंजन से, ज्ञान के प्रकाश से, ज्ञान के आलोक से, ज्ञान की पराकाष्ठा हो। अंतर मन में अंधकार है, तिमिर है, द डार्कनेस। और ज्ञान को कैसे भरेंगे? मुरलियों से। ज्ञान को कैसे भरेंगे? मुरली के श्रेष्ठ चिंतन से। अभी करना है ये काम। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, संकल्प का खजाना और समय का खजाना, ये चार खजाने बाप दादा देखते हैं। ब्रह्मा का उदाहरण दिया, इसी के आधार से बचपन में भी गायन है, बाल्यकाल का गायन है पूजन का, राधे कृष्ण का गायन है पूजन का, गोप गोपियों का गायन है पूजन का, और बड़े होने के बाद लक्ष्मी नारायण का, चारों ही रूप में पूजा है। वो भी अब के पुरुषार्थ पर है। तो सबसे पहला काम जो हर एक को करना है कौन सा? स्वयं को ज्ञान से भरना है। ज्ञान से कहा, सूचनाओं से नहीं। सूचनाएं तो बहुत एकत्र कर ली, मैं आत्मा हूं सूचना, मैं परमधाम की निवासी हूं सूचना, भगवान आया है सूचना, संगम युग चल रहा है सूचना। सूचनाओं को ज्ञान नहीं समझ लेना। अब घर जाना है, ये सूचना है। आत्मा के साथ गुण है, सूक्ष्म वतन है, परम धाम है, 5000 साल का चक्र है, 84 जन्म है। सूचनाएं बहुत एकत्र कर रखी है और सूचनाओं को ही ज्ञान समझ रखा है। नॉलेज इज नॉट इन्फॉर्मेशन, ज्ञान अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात प्रकाश, ज्ञान अर्थात परिवर्तन, ज्ञान अर्थात इम्प्लीमेंटेशन। कल का वरदान, कमल बनो अमल करो, अमल करना परिपालन करना, अमल करना अर्थात टू इम्प्लीमेंट। उस ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज करना, ज्ञान अर्थात परिवर्तन। नहीं तो एक चोर को भी पता है चोरी नहीं करनी। महाभारत में दुर्योधन कहता है, मुझे पता है मैं जो कुछ कर रहा हूं सब गलत है, परंतु हे गोविंद, हे कृष्ण, मैं क्या करूं? सब पता रहने के बाद भी गलत नहीं करूं ये शक्ति मुझ में नहीं है, और सही करूं ये शक्ति मुझ में नहीं है। जो गलत कर रहा है उसे भी पता है, एक चोर को भी पता है, एक टेररिस्ट को भी पता है वो जो कुछ कर रहा है गलत कर रहा है, परंतु पावर नहीं है, शक्ति नहीं है। ज्ञान अर्थात शक्ति। लास्ट संडे की मुरली, किसी ने इस ज्ञान को पॉइंट के रूप में स्वीकार किया है, किसी ने इस ज्ञान को शक्ति के रूप में, शस्त्रों के रूप में धारण किया है। हमने किस रूप में धारण किया? जिसने केवल पॉइंट के रूप में धारण किया है वो माया से सेफ रहेंगे, परंतु कभी कभी फिर कभी कभी माया का आक्रमण होगा। ज्ञान शक्ति बन जाए. नॉलेज इज पावर. अभी अभी शांतिवन में मुरली चली थी, चारों सब्जेक्ट में अनुभवी मूर्त बनना है. ज्ञान में अनुभवी मूर्त अर्थात लाइट और माइट स्वरूप हो जाए ज्ञान. योग में अनुभवी मूर्त अर्थात कर्मेंद्रिय जीत. धारणा में अनुभवी मूर्त अपने आप बन जाएंगे जब ज्ञान और योग होगा. और सेवाओं में अनुभवी मूर्त, उसके बहुत सारा विस्तार किया, सूक्ष्म घृणा भी ना हो किसी के प्रति. ये तो ज्ञान में नहीं आएगा, इसको सिखाना वेस्ट ऑफ टाइम है. सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना. परमात्मा परिवार है, प्रभु परिवार है. ब्रह्मा का उदाहरण, अंतिम समय भी शब्द थे, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी. याद आई अभी अभी मुरली चली थी लेटेस्ट अव्यक्त बाप दादा की, 30 जनवरी 2010 की रिकॉर्डेड मुरली. तो सबसे पहला काम जो अब तक नहीं किया है या अभी करना बाकी है, अपने आप को ज्ञान से भरना है. कैसे भरेंगे? चिंतन से, मनन से, अध्ययन से, स्टडी से, स्वाध्याय से. यज्ञ के दिनचर्या का टाइम टेबल किस किस के पास है? डायरी होगी उसके पीछे है. देखो डायरी है ना, उसके पीछे टाइम टेबल लिखा होगा. है किसके पास डायरी? दोपहर में क्या लिखा है पढ़ो. दोपहर में क्या करना है? 2 से सेल्फ स्टडी अर्थात स्वाध्याय. 2 बजे से 3:30 4 क्या लिखा है? स्वाध्याय. सेल्फ स्टडी अर्थात स्वाध्याय. एक है क्लास स्टडी, एक है सेल्फ स्टडी. मुरली क्लास में गए, मुरली सुन ली, पॉइंट्स लिख लिए, काम पूरा हुआ, डायरी बंद, कल मिलेंगे, टाटा बाय बाय. ये तो क्लास स्टडी हो गई. अब सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी. स्व उन्नति के लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा. जब तक स्वाध्याय नहीं होता, खुद नहीं पढ़ते बैठकर, तब तक कोई परिवर्तन नहीं, तब तक ज्ञान अंदर घुस नहीं सकता. सुना, इधर से सुना और उधर से गया. क्या सुना पता नहीं, कौन सी पॉइंट थी पता नहीं, क्या था बहुत अच्छा था, पर क्या था वो मत पूछना. जो था वो अच्छा था. ज्ञान को पढ़ना है, ज्ञान का अध्ययन करना है. जैसे स्टूडेंट पढ़ता है वैसे. ये स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, यहां पर स्मार्ट स्टूडेंट बनना है, स्टडी स्किल्स को सीखना है. कल की मुरली में था, बाप कैसे रमणीक रीति से तुमको सिखाते हैं. वो टीचर है, तुमको नई नई बातें सिखाते हैं. ये गुह्य भी है तो गुह्यतम भी है. राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मिदम उत्तमम. पवित्र को पवित्र करने वाला ये विद्या है. ऐसा ये ज्ञान है, राज योग का ये ज्ञान है. राजयोग अर्थात जिसके योग में राजा बनना है, उसको कहते हैं तुम्हारे में अभी राजयोग चल रहा है. तुम्हारा, तुम्हारे योग में राजयोग है, ज्योतिषी में कहते हैं. अर्थात अगर कोई ज्योतिषी मंत्री के पास आ जाए और कहे कि तुम्हारा राजयोग है, अर्थात तुम राजा बनने वाले हो, मंत्री सोचने लगता है मेरी कुंडली में राजयोग है. ये राजयोग का दूसरा अर्थ है, अर्थात राजा. आज कहा प्रजा अपने महाराजन को सम्मान देंगी, मात पिता के रूप में देखेगी. सुबह की अव्यक्त वाणी. तो सबसे पहला ज्ञान, दूसरा योग. अपने योग की स्थिति को, योग के चार्ट को, योग के ग्राफ को बढ़ाना है, पावरफुल योगी बनना है. स्थित प्रज्ञ योगी, जो अचल डोल रहे, जो जरा भी हिले नहीं, चाहे कितनी विकराल परिस्थितियां क्यों ना हो. in the fell clutch of circumstances, my head is unmoved. कवि लिखता है चाहे कितनी भी परिस्थितियां हो मैं अचलडोल खड़ा हूं. आई एम द मास्टर ऑफ माई शिप, आई एम द कैप्टन ऑफ माई लाइफ. मैं अपने जहाज का मालिक हूं, मैं अपने जीवन का कप्तान हूं. मेरे हाथ में है, मैं मास्टर हूं, कोई मुझे हरा नहीं सकता. माई हेड इज ब्लडी बट अनमूव्ड. खून से रक्त रंजित है सिर पर झुका नहीं है. योग, योग को बढ़ाना है. कम से कम 2 घंटा योग तो बैठ के होना चाहिए. हमारा कितना है? और जो तीव्र पुरुषार्थी है, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात बैठकर कम से कम 4 आवर्स योग, बहुत बड़ा टारगेट है. 4 घंटा बैठ के करना बहुत ऊंचा टारगेट है. बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा. वो सारा समय जो व्यर्थ में जा रहा है, वो सारा समय गॉसिप्स में जा रहा है, वो सारा समय इधर उधर की बातों में जा रहा है, वो सारा समय जो पॉलिटिक्स की चर्चा में जा रहा है, वो सारा समय जो व्यर्थ प्रलाप में जा रहा है, वो सारा समय बचाना पड़ेगा और योग में लगाना पड़ेगा. तो कहीं 4 घंटा होता है बैठकर, बहुत बड़ी तपस्या है. कितनी माया है, कितने आकर्षण है, कितना प्रपंच है संसार की धंधादोरी, बिजनेस, जॉब, ऑफिस, उससे भी ज्यादा मन का व्यर्थ आकर्षण, डिजिटल आकर्षण, इलेक्ट्रॉनिक माया. तीसरा, धारणाओं में स्वयं को मजबूत बनाना है. ये काम अभी रहा हुआ है. अभी पास सारी कल की शाम की क्लास में 26 धारणाएं बताई थी, सबको याद है ना? ए से लेकर तो जेड तक 26. बार बार मन ही रिवाइज करना है. यहां से जा रहे पैदल, रिवाइज करना है ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर, डी फॉर, चलते चलते, उठते बैठते ज्ञान का चिंतन. तो धारणाओं में, दिव्य गुणों में अपने आप को क्या करना है? मजबूत. चौथा, सेवाओं से दुआएं कमानी. ये काम अभी बहुत रहा हुआ है. सभी की दुआएं मिल जाए, सारे ब्राह्मण परिवार की दुआएं मिल जाए, सेवा में कोई बहानेबाजी ना हो, जब भी पुकारा जाए आ जाना. जितनी आत्माओं की सेवा करेंगे उनके दिल से दुआएं निकलेगी. जिनको कोई नहीं देखता, जिनकी कोई केयर नहीं करता, जिनको कोई पूछता नहीं, द लॉस्ट, द लोएस्ट एंड द लोवलीएस्ट, उनकी पूजा करना, उनको अपने दिल से उनकी पूजा सेवा करना. तो सेवा करते करते ही हम स्वयं पूज्य स्वरूप बन जाएंगे. और बाबा ने एक मुरली में कहा था, जिनकी तुम सेवा करोगे वो द्वापर से क्या बन जाएंगे? तुम्हारे भक्त. इसके लिए सेवा का अवसर छोड़ना नहीं. चाहे मधुबन में सेवा के लिए बुलाया गया, चाहे सेंटर पर सेवा के लिए बुलाया गया, चाहे किसी आत्मा को कोर्स कराना है या कुछ दिखाना है या कुछ समझाना है, सेवा करना है. और दिल से सेवा करनी है, मन लगा के सेवा करनी है. जितनी जो दिल से सेवा करते हैं उनको बहुत कुछ मिल जाता है. बाबा मुरलियों में भोली दादी को याद करते, उसने कभी किसी को ज्ञान नहीं सुनाया, उसने स्थूल सेवा की, भोजन परोसने की, परंतु सबका दिल जीता. मधुबन निवासी बताते हैं, अगर कुछ भोग में बना है तो कुछ एक्स्ट्रा बना है स्पेशल, तो वो किसी भाई को बुलाती थी, तुमको ये मिला क्या? जिलेबी? ये लो, किसी को बताना मत, पर मैंने दिया है करके। फिर वो गया, अभी दूसरे को बुलाती थी, इधर आओ, तुमको वो मिला नहीं मिला, ये लो, पर किसी को बताना मत, मैंने दिया है। आत्माओं का सम्मान करना और आत्माओं को देना, एक बर्फ की फैक्ट्री थी, आइस फैक्ट्री, जिसमें 9 से 5 बजे का टाइम था, 9 बजे सभी एम्प्लॉय घर चले जाते थे। एक बार एक एम्प्लॉय, एक कर्मचारी, एक सेल था, एक कमरा था जो माइनस डिग्री में था, 40, वहां कुछ काम से गया एक मिनट के लिए, और टाइम पूरा हो गया, उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया और वो बंद हो गया, लॉक हो गया, फैक्ट्री बंद हो गई, सब लोग चले गए 5 बजे। वो अंदर ही अंदर उस सेल में अब क्या करता, कहां से चिल्लाता, किसको चिल्लाता, सब बंद पैक। अब सुबह तक उसको वहां रहना मतलब मृत्यु, खत्म। वो बस प्रार्थना करने लगा, और उतने में 15-20 मिनट में वो जो वॉचमैन था वो आया, और उसने वो लॉक खोला और उसको कहा कि आप बाहर आइए। तो इस व्यक्ति ने पूछा कि तुमने कैसे, तुमको कैसे पता मैं अंदर रह गया। वो कहता है इस फैक्ट्री में 50 लोग आते हैं कार्य करने वाले एम्प्लॉय, एक आप ही हो जो रोज मुझे गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग करते हो। आज सुबह तो आपने गुड मॉर्निंग किया था, पर शाम को इतने लोग गए, आप नहीं थे, इसलिए मुझे डाउट हुआ कि आप कहां रह गए, इसलिए मैं खोलने आया। आत्माओं की सेवा करना, आत्माओं का सम्मान करना, रिस्पेक्ट का रिकॉर्ड रखो, बाबा की महावाक्य है। ये चौथा काम। पांचवा काम, संपूर्ण पवित्रता। बहुत पवित्रता में गड़बड़ की है, अब नहीं, अब वो रूहानी जागृति लानी है। हमारा लक्ष्य है संपूर्ण पवित्रता, जरा भी शरीर खींचे नहीं, जरा भी शरीर का आकर्षण ना हो, ये शरीर मिट्टी है, ये संसार असार और ये शरीर मिट्टी, शरीर खींचना बंद हो गया है, काम के सारे केंद्र निष्क्रिय हो गए हैं, चेतना ऊपर उठ गई है, और वहां से शुद्ध संकल्पों से विश्व की सेवा कर रही है। आत्माएं तो नीचे विकारों के गर्त में डूबी है, शरीर के अतिरिक्त तो कोई सोचता नहीं, पर जब आत्मा ऊपर ऊपर उठती, ऊर्जा का आरोहण जब होगा, ऊर्ध्वरेता योगी, ओजस तेजस तेजस्वी योगी, तब उसकी ऊर्जा बहुत हायर लेवल पर है, और वहां से सेवा हो रही है। संपूर्ण पवित्रता, अब बनना है पवित्र, कल नहीं, अब, बाद में समय नहीं होगा, पछताना पड़ेगा। चिड़िया तो पूरा खेत चुक कर ले गई, अब कुछ भी नहीं बचा खेत में, आलस में सोए रहे, अब फसल काहे की। पवित्रता को समझना है। यज्ञ में एक किताब है, संपूर्ण पवित्रता, बाबा के महावाक्य है उसमें सारे, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो पढ़े। संपूर्ण पवित्रता, जितने प्यूरिटी के महावाक्य है बाबा के, वो सारों का संकलन है उसमें। एक दूसरी भी किताब आपको बता रहे, यज्ञ की किताब, वारे मैं, पढ़िए, वारे मैं एक किताब है। तो सबसे पहला ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, पवित्रता, छठवा संकल्प, एक एक संकल्प को प्यूरिफाई करना है, एक एक संकल्प को श्रेष्ठ बनाना है। ये काम आज करना है, अब करना है। सारा खेल विचारों का है। विचार नीचे जाते हैं, हम नीचे जाते हैं। विचार ऊपर उठते हैं, हम ऊपर उठते हैं। जो गलतियां होती हैं, जब विचार नीचे है तब गलतियां हुई है जीवन में, जब विचार श्रेष्ठ है तब गलतियां नहीं हुई है। जो संकल्प है उसी अनुसार सब कुछ होता है। बैठे बैठे ही व्यक्ति सोचता है कि इसने मेरे साथ इतना बुरा किया, मुझे भी कुछ करना चाहिए। बदले का संकल्प उत्पन्न हुआ, धीरे धीरे वो बड़ा और बड़ा और बड़ा, शब्दों में आएगा फिर कर्मों में आएगा। बीज कहां पड़ रहा है? इसके लिए ऐसे सत्संगों में आकर बैठना चाहिए। जहां पर भी सत्संग हो चुपचाप आकर बैठना चाहिए। पता नहीं कौन सी पॉइंट अंदर टच हो जाए, पता नहीं कौन सी पॉइंट अंदर किसी पुराने संस्कार को टच करते और वो संस्कार हमारे अंदर है ये हमें पता चल जाए। नहीं तो अब तक पता ही नहीं था वो है। जिसके लिए ज्ञान सुनते रहना है ताकि संकल्प क्या हो, श्रेष्ठ हो। और सबसे श्रेष्ठ ज्ञान भगवान की मुरली है। ऐसे कितने लोग हैं यहां पर जितने पिछले मास में, लास्ट वन मंथ में एक बार भी मुरली सुनना या पढ़ना, दोनों में से कोई भी मिस नहीं किया। इंद्र सभा है, ध्यान से हाथ उठाना, पढ़ा या सुना, दोनों भी तो बहुत सारे, और पर बहुत सारे नहीं भी है। भगवान सुना रहा है और हमने सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। ये वो ज्ञान है जो आत्मा को मुक्त कर दे। गोपियां कृष्ण से कहती है भागवत में, तब कथामृतम, हे गोविंद तेरी ये जो कहानी है, तेरे ये जो शब्द है, तेरी ये जो वाणी है अमृत है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, हमारा जीवन तप रहा है विकारों में। कल्मषापहम, कल्मष है, कलंक लगे है आत्मा पर, विकारों के धब्बे है बड़े बड़े। श्रवण मंगलम, तेरी वाणी सुनना मंगल है। कविबीरिडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम भूरिता जना, ऐसी तेरी वाणी है हे गोविंद, ऐसी भगवान की वाणी है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविबीरिडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम, जो सुनने मात्र से मंगल होता है। और हमने सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो कहां से मंगल होगा? सब अमंगल होगा, सब अनिष्ट होगा, दुख होगा, उदासी होगी, दर्द होगा, फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आज की मुरली में है संगम युग, अर्थात कंबाइंड रहने का युग है। फिर अकेले हो जाते हैं, हां चिंतन के लिए अकेले हो जाओ वो ठीक है, पर बाप से अकेले मत हो जाना। आज है ना सुबह छत पर जाते हैं, पहाड़ पर जाते हैं, घूमने जाते हैं, वो भले करो पर बाप से अलग मत हो जाओ। एक मुरली में बाबा ने कहा था बाप है सर्वशक्तिवान, पर बच्चे बाप से भी ज्यादा पावरफुल है। कैसे कैसे? बाप बच्चों के साथ कंबाइंड रहता है, पर बच्चे इतने पावरफुल है कि बाप से भी अपने आप को अलग कर देते हैं। बच्चे बाप से भी ज्यादा पावरफुल है। संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना है छठवा। सातवा बोल, हमारे बोल कैसे हो मीठे। आज का वरदान कुछ है ना ऐसा मधुरता। अधरम मधुरम वदनम मधुरम चलितम मधुरम चरितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, जिसका सब कुछ मधुर ही मधुर हो, उसका चलना उसका उठना उसका बैठना। वेणु मधुरा गोपी मधुरा गोपा मधुरा मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम, मधुर ही मधुर। हमारे शब्द कैसे हो मधुर। और कोई कोई के शब्द ऐसे हैं कि जहां जाते हैं दो तीन को घायल करके आते हैं, तब तक शांति नहीं मिलती है, कलेजा ठंडा नहीं होता है जब तक किसी के ऊपर कुछ ना कमेंट नहीं कर देते, किसी को टॉन्ट नहीं मार देते, जले पर नमक नहीं छिड़क के आते तीन चार लोगों को, जब तक घायल नहीं कर देते तब तक बेचैनी। जाते हैं जहां बोलते हैं तो झगड़ा। जगदीश भाई सुनाया करते थे, एक माता थी, एक महिला एक गांव में, सुबह से लेकर रात तक सबसे झगड़ा करती थी, बेचैन रहती थी अगर झगड़ा नहीं किया तो, जिसको मिला कोई भी कारण से झगड़ा करती थी, बस कारण चाहिए झगड़ा करने के लिए। एक बार सारे गांव वाले सोचते इससे बात ही नहीं करेंगे, जितना करना है करने दो, जितना आरोप लगाना है बड़बड़ करना है करने दो, हम बात ही नहीं करेंगे। तो वो सुबह से निकलती है, जिसको जिसको झगड़ा करना है करती, परंतु कोई बोलने को ही तैयार नहीं। इतनी परेशान होती है, शाम तक क्या करे, कुएं में जाती है, कुएं में अपनी परछाई देखती और परछाई से झगड़ा करना चालू करती है। झगड़ा तो करना है। हमारे बोल मीठे कम मधुर सुमान युक्त वरदानी प्रोत्साहन देने वाले, उमंग उत्साह बढ़ाने वाले, किसी को गिराने वाले नहीं। शांतिवन में मुरली चली थी रिकॉर्डेड अभी अभी 15 तारीख, क्या था, किसी को गिराना नहीं है, ब्राह्मणों को गिराना नहीं, उमंग उत्साह से ऊपर उठाना है। यह है सेवा में अनुभवी अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी। चार सब्जेक्ट में से चौथी सब्जेक्ट बोल, अभी बोल को ठीक करना है। अगर बोलना आता ही नहीं है वैसा तो क्या करना है, फिर चुप बैठना है। अगर डर है कि हम बोलेंगे और गड़बड़ होगी तो क्या करना है, चुप। अमेरिका के एक प्रेसिडेंट ने लिखा है, आई हैव ऑलवेज रिपेंटेड फॉर व्हाट आई हैव सेड एंड नेवर फॉर व्हाट आई थॉट। हमेशा मैंने पश्चाताप उन चीजों के लिए किया है जो मैंने बोल दिया, उनके लिए कभी नहीं किया जो केवल सोची थी, सोच तक रहा बस, पर बोल दिया और गड़बड़ कर दी। अच्छा होता कि उस समय नहीं बोला होता, अच्छा होता उस समय रोक दिया होता। एक बहुत बड़ा लेखक पिछली सदी में हुआ था, डेल कार्नेगी, बहुत सारी किताबें है उसकी और बहुत फेमस है, अमेरिका का बहुत बड़ा लेखक, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्पीकर डेल कार्नेगी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, बहुत सारी किताबें है। उन्होंने एक बार भाषण दिया अब्राहम लिंकन पर, अब्राहम लिंकन पर भी उनकी एक किताब है, और एक बार रेडियो पर स्पीच दिया अब्राहम लिंकन पर, और वो स्पीच सुनने के बाद एक महिला ने उनको लेटर लिखा कि आपने ये जो लेटर में आपके भाषण में कहा ना, ये सब गलत कहा, इसमें बहुत सारी त्रुटियां है, आपको पहले रिसर्च करना चाहिए था, इतना बड़ा स्पीच देने से पहले, इतने बड़े व्यक्ति पर बोलने से पहले आपको इतना तो समझना चाहिए था कि बराबर बोलूं, सारे स्टैटिस्टिक्स राइट हो, ऐसे ही बोल दिया। और जैसे ही डेल कार्नेगी की वो लेटर देखता है, वो कहता है इसकी इतनी हिम्मत मुझे बता रही है, मैंने पूरा लिंकन का स्टडी किया है और मुझे सिखा रही है भाषण कैसे देना। तुरंत कमरे में जाता है और एक भयंकर लेटर लिखता है, खतरनाक जहरीला पॉइजनस लेटर उस लेडी को, परंतु रात हो गई है ज्यादा, सोचता है कल पोस्ट करूंगा, अपने तकिया के नीचे रख देता है। फिर दूसरे दिन उसकी हिम्मत कैसी हुई इतनी उस लेडी की, मुझे आई एम द ऑथर ऑफ सो मेनी बुक्स, पर पोस्ट करने से पहले सोचता है एक बार पढ़ लेता हूं, एक बार पढ़ता है, एक बार बहुत ज्यादा लिख दिया है तो कहता है दूसरा लिखता हूं, फिर दूसरा लिखता है, और फिर सोचता है अभी अभी कभी क्यों, शाम को पोस्ट करूंगा, फिर से रख देता है। शाम को आता है, कहता है एक बार पढ़ तो लू, पढ़ता हूं तो कहता है अरे तो ये फिर भी ज्यादा ही है, बहुत थोड़ा लैंग्वेज इज टू रूड, कहता है नेक्स्ट डे, थर्ड डे, 7 डेज तक लेटर रिवाइज करता है अपना, और 7वें दिन फिर लेटर लिखता है उस बहन को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो जो कहा था वो सब राइट है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, यू हैव पॉइंटेड मी आउट कि मैंने जो जो गलतियां की और आपकी वजह से मैं बहुत सुधर गया हूं, अभी मैं अच्छे से लिखूंगा। फिर वो महिला उनको मिलने आती है अगले दिन 7 दिन के बाद, एंड दे बिकम लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स। सोचो अगर पहला लेटर लिख दिया होता तो झगड़ा। इसलिए तुरंत एसएमएस नहीं कर देना, फटाफट उधर से व्हाट्सएप आया और तुरंत वेट, उसने ऐसा कहा, धीरज, इतनी जल्दी होती आंसर करने की सबको, कितने लंबा मैसेज भेज दिया, फुल ऑफ अब्यूजेस, गालियां, अब्यूजेस, आरोप, हम क्या करते हैं, तुमने क्या क्या किया वो लिखेंगे। इसके लिए बोल हमारे मधुर, और बोल केवल ये बोल नहीं, ईमेल, टेक्स्ट, वो भी बोलिए। अगला कर्म, कर्म सारे दैवी कर्म हो, आज ही करने हैं, श्रेष्ठ कर्म है, निस्वार्थ कर्म करने हैं, बाप की याद में कर्म करने, आत्माभिमानी स्थिति में कर्म करने, भ्रष्ट कर्म नहीं करने, पाप कर्म नहीं करने, पहले ही पापों का इतना बोझ है, उसमें भी झूठ बोल दिया, पाप कर्म हुआ, उसमें भी किसी को हर्ट कर दिया, पाप कर्म हो गया। कर्म सारे महान हो जाए। उसके बाद में अगला संबंध संपर्क, अपने सभी संबंध संपर्क को डिवाइन बनाना है। यदि हमारा ये संकल्प आज भगवान के सामने प्रस्तुत किया गया तो क्या बाबा उसको स्वीकार करेगा? एक भाई एक बहन, आपसी ईश्वरीय स्नेह है, मैत्री है, सेवा करते हैं साथ साथ, पर यदि वो दोनों को बाबा के सामने प्रस्तुत किया गया तो क्या इन दोनों का संबंध बाबा स्वीकार करेगा? क्या उन दोनों के संबंध में प्यूरिटी है? अगर संबंध में प्यूरिटी है तो ही स्वीकार किया जाएगा, नहीं तो नहीं। डिवाइनाइज, स्पिरिचुअलाइज द रिलेशनशिप्स। अभी जो संबंध है उसमें लौकिकता है, लौकिक भाव है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, कौन पति कौन पति पत्नी, सभी ईश्वरीय भाई बहन है, आत्मिक भाई है। और जिन संबंधों में लगाव है, बाबा को बदबू आएगी, बाबा कहेंगे ये मुझे स्वीकार नहीं, हटाओ, खुदा को तस्लीम नहीं करेगा ऐसे रिश्तों को। भगवान को वो संबंध स्वीकार है जो बहुत प्योर है। कुछ कुछ सेंटर पर हमने ऐसी बहनें देखी है कि उनके मां बाप सेंटर पर आते हैं पर इतने डिटैच है कि इतने समय तक तो पता ही नहीं चला ये इसके पिता है। वो उसको भी बहन जी कहते हैं, उसकी माता जी भी बहन जी कहती है। और ना ही ऐसा नहीं कि सेंटर क्लास पूरा हुआ और मिलने लगे, कभी आपस में एक साथ मिलते हुए देखा नहीं अलग से, इतनी डिटैचमेंट। वो भी अपनी माता जी को उसके सरनेम जो है उसके आगे माता जी लगा के पुकारती है, बेटी, इतना डिटैचमेंट। डिवाइन रिलेशनशिप्स है सारे, नहीं तो हम मम्मी मम्मी और पापा। अगला चलन, अपनी चलन प्योर बनानी है। चलन अर्थात बिहेवियर, बिहेवियर अर्थात इटिकेट्स, इटिकेट्स अर्थात मैनर्स। मैनर्स कैसे करने हैं अपने? डिवाइन। एग्जाम्पल, मैनर्स के एग्जाम्पल, पांडव भवन में हम लोगों का जो ग्रुप है उसमें इसी की सीरीज चालू है, गेस्ट बनकर जाओ तो क्या मैनर्स होने चाहिए, होस्ट के क्या मैनर्स होने चाहिए, टेबल पर क्या मैनर्स होने चाहिए, बाथरूम में क्या मैनर्स होने चाहिए, टॉयलेट मैनर्स, बाथरूम मैनर्स, टेबल मैनर्स, टॉकिंग मैनर्स, हर चीज में मैनर्स है। छोटी छोटी बातें सीखनी है, और मधुबन में तो बहुत ज्यादा, मधुबन में सभी जाते हैं, कमरा मिलता है, जैसा जाते समय कमरा मिला था छोड़ते समय वैसे ही छोड़ के आना है उसको, उतना ही स्वच्छ, नहीं तो सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ, तकिया उधर वो उधर, कचरा सारा, टोली, बाथरूम में बाल ही बाल लहराते हुए। रूम मैनर्स, स्लीपिंग मैनर्स, बेडरूम मैनर्स, आज ही करना है। अपना अपना घर लास्ट टाइम किसने साफ किया था पूरा, हाथ खड़ा करेंगे माताओं में से, पूरा घर स्वच्छ है, पूरा, पूरा में अलमारी, पूरा में शूज, पूरा में सारे ड्रॉवर्स, स्टोर रूम, गार्डन, किचन, यूटेंसिल्स, साफ है सब नहीं है? कितने खाने तो ऐसे है पता नहीं लास्ट कब खोला था उनको, क्या उसमें भरा है वो भी नहीं पता, भर के रख दिया है, इतनी सारी चीजें भरी है, सब निकालो उसको और फिर से भरो, जो काम का है रखो, जो काम का नहीं है फेंक दो। रूम, कमरा, साफ सफाई, इटिकेट्स, मैनर्स, कोई आए रूम पर तो क्या लगे आश्रम है जैसे, इतनी प्यूरिटी, इतनी स्वच्छता जहां पर है। सोचो अव्यक्त बाप दादा कहे मैं तुम्हारे घर में आता हूं आज शाम को 6 बजे, क्या करेंगे? फटाफट सफाई, सफाई अभियान, भगवान आ रहा है। सो समझना रोज अमृत वेला बाबा मेरे घर आ रहा है। जितनी माताएं हैं आपको एक काम दे रहे हैं, अमृत वेला बाबा मेरे घर आ रहे हैं, और बाबा का हाथ पकड़ के घर का चक्कर लगाना है, एक किचन बाबा को दिखाना, ये किचन है, ये है, ये है, ये है, ये है, चलन। उसके बाद में बुद्धि, बुद्धि को दिव्य बनाना है, आज की आज, बहुत जंक लगी है बुद्धि को, बहुत मैली हो गई है बुद्धि, इस बुद्धि को डिवाइन करनी है, डिवाइन इंटेलेक्ट, डिवाइन इंटेलेक्ट अर्थात जो ईश्वरीय नशे में रहे, जो ईश्वरीय जजमेंट, जजमेंट पावर, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, बहुत दिव्य हो। जैसे आज यहां पर भट्टी है, दूसरा मन कहता है कौन जाएगा वहां पे, कौन बैठेगा, उससे अच्छा तो आज छुट्टी है, आज कहीं घूमने जाते हैं, माइंड ऐसा। एक भाई है, उनका अनुभव है 1969, ज्ञान में आ गए थे पहले ही, एक दो साल पहले, ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं था, स्टेशन आए, दो ट्रेन खड़ी थी, एक माउंट अबू जाने वाली और एक दूसरी लौकिक घर जाने वाली। सोचा लौकिक घर चला जाता हूं, बाबा से तो बाद में मिल लेंगे, और लौकिक घर चले गए, और 18 तारीख को बाबा ने शरीर छोड़ दिया, दो तीन दिन के बाद। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अपनी बुद्धि को डिवाइन करना है, उसके बाद में संस्कार। अभी अभी शांतिवन में मुरली चली थी, 3 बातें, भटकता मन, चंचल मन, भटकती बुद्धि, पुराने संस्कार, बहुत तंग करते, परेशान करते। संस्कारों को भी डिवाइन करना है, संस्कार अर्थात हैबिट्स, सिंपल वे में हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स फॉर्म करनी है, और सबसे अच्छी हैबिट है चिंतन की हैबिट, सबसे अच्छी हैबिट है डिस्कशन करने की। कौन लोग हैं यहां पर जो ज्ञान की रोज चर्चा करते हैं? डिस्कशन, डिस्कशन, डेली डिस्कशन, मुरली पर बहुत कम, बहुत ही कम, रोज रात्रि सोने से पहले अगर घर में दो तीन लोग ज्ञान में चलते हैं तो रात में बैठे और आज की मुरली 9:30 से 10 बजे तक या 9 से 9:30 बजे तक आज की मुरली में क्या क्या सुना है, वो कुछ पॉइंट बताएगा, ये कुछ पॉइंट बताएगा। दो लोग चाहिए डिस्कशन के लिए, बिना मुरली डिस्कशन किए सोना नहीं है। हमारे मुख से ज्ञान निकलना चाहिए, तो ज्ञान के संस्कार भरेंगे। यहां पर जो युगल है, दोनों ज्ञान में चलते हैं, रात में दोनों बैठे और ज्ञान की चर्चा करें और फिर सोए। कोई माता है किसी के साथ, कन्या के साथ, किसी बेटे के साथ, उनका बेटा अगर ज्ञान में, दोनों मिलकर ज्ञान चर्चा करें। सेवा केंद्र पर बहनें ज्ञान की चर्चा करें बैठे रात में सोने से पहले। कई सेंटरों पर है ऐसा, रात्रि क्लास होता है। बिना ज्ञान की चर्चा करे सोना नहीं। ज्ञान दूसरों को सुनाना वो अलग, कोर्स कराना अलग, चर्चा करना, बाबा ने ये क्या कह दिया आज, ऐसा क्या कहा, ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, प्रश्न, डिस्कशन ऑफ नॉलेज, ब्रेनस्टॉर्मिंग, संस्कार को डिफाइन करना है। उसके बाद में अगली पॉइंट, दृष्टि। इस दृष्टि को क्या बनाना है, निर्विकारी। अभी अभी परसों कुमार कुमारियों की भट्टी हुई थी शाम को, उसमें यही टॉपिक था, निर्विकारी दृष्टि। बाद में वो सुन सकते हैं आप, निर्विकारी दृष्टि कैसे बनानी। तो अपनी दृष्टि को निर्विकार, और एक बात, दृष्टि निर्दोष हो। इस ड्रामा में हर एक्टर कैसा है, निर्दोष, ना केवल निर्दोष, संपूर्ण निर्दोष, किसी का यहां कोई दोष नहीं है, हर एक अपने कर्म अनुसार कर्म कर रहा है। इसके लिए, इसके वजह से ऐसा हुआ, वो मेरे जीवन में नहीं आना चाहिए था, वो उसने ऐसा क्यों कर दिया, जिसने जो किया सब ठीक, किसी के प्रति कोई कंप्लेंट नहीं है हमारी, मेरे साथ वही हुआ जो होना चाहिए था। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व्ड, जो झटका, जो घूसा तुमको मिला है, यू डिजर्व्ड इट, नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व्ड। एक क्लास है सीक्रेट ऑफ वर्क, न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया में दिया हुआ, किसी को दोषी नहीं मानते हम, हमारे साथ जो हुआ बहुत अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए था, यही जीवन में हुआ। अगली पॉइंट, दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव, व्यू पॉइंट, पॉजिटिव। दृष्टिकोण अर्थात पॉजिटिव। जैसे एक व्यक्ति बूढ़ा हो गया, उसके बेटा और बहू बहुत परेशान थे उससे, वो कहते थे नहीं आप इधर नहीं रहो, आपको हम अनाथ आश्रम, अपना वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे, वहां आप खुश रहना, अब तुम्हारा रोज रोज का कौन करेगा सब। पिता बूढ़ा हो गया है और बहू को बिल्कुल पसंद नहीं है ससुर जी, और बहू के कहने पर वो उनका बेटा वो एक दिन फाइनल डिसीजन ले लेता है कि इनको वृद्धाश्रम में, ओल्ड एज होम में छोड़ देंगे। तो वो जो पिता है वो खुश है, उसको कोई दुख नहीं है, ओल्ड एज होम में लेके जाते हैं, वो बेटा चला जाता है, वो रिसेप्शनिस्ट उसको लेके जाती है अंदर, दरवाजे पर आती है, दरवाजा खोलती है, कहती है ये तुम आपका रूम है। वो कहता है कितना अच्छा रूम है, बहुत ही अच्छा है। वो कहती है आपने अभी अंदर प्रवेश ही नहीं किया है, आपने कैसे कह दिया ये बहुत अच्छा रूम है। वो कहते हैं रूम अच्छा होने के लिए उसको देखने की आवश्यकता नहीं, पहले से ही माइंड को सेट कर दिया है कि ये रूम बहुत ही अच्छा है, इसलिए अच्छा दिखाई देगा, पहले से ही सोच के रखा है ये कमरा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर नहीं देखा तो फिर दोष दिखाई देंगे, अरे यहां पे खिड़की ऐसी क्यों है, वो वैसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। पर्सपेक्टिव ही पॉजिटिव बना के रखा है, व्यू पॉइंट, दृष्टिकोण ही पॉजिटिव है, पहले से ही सोच के रखा ये जो होगा ना बहुत अच्छा है, नए कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे, पहले से सोचना ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है, भारत की शादी और विदेश की शादियों में अंतर है। भारत की शादी में बहू सोचती है मैं जिस घर में जाऊंगी बस अब वही मेरा घर है, वही सब कुछ है। घर जाती है पति अच्छा नहीं है, सास ससुर अच्छे नहीं है, पर वो सोचती है अब मुझे यही रहना है, जीवन बीत जाता है। विदेश में जैसे ही शादी होती है सब कुछ अच्छा नहीं है, मैं क्यों रहूं, डिवोर्स तुरंत कट। यही तो अंतर है यहां की और वहां की संस्कृति में। ट्रेनिंग ही अपने आप को ऐसी देनी है कि मेरे साथ जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, ये हुआ खराब नहीं हुआ, इसमें भी कल्याण था, उसमें भी कल्याण था और इसमें भी कल्याण था। दृष्टिकोण पॉजिटिव, उसके बाद में वृत्ति। हमारी वृत्ति बहुत श्रेष्ठ हो, बहुत ऊंची हो। बाबा ने कहा है संकल्प से वृत्तियों का निर्माण होता है। वृत्ति अर्थात वृत्ताकार, वृत्ति अर्थात रिपल्स। किसी तालाब में पत्थर फेंको तो क्या होता है, रिपल्स, वर्तुल, उसको कहते हैं रिपल्स। जो मॉडिफिकेशन ऑफ द चित्त इज नोन एज वृत्तिस, मन के संकल्पों के द्वारा जो तरंगे उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है वृत्ति, वृत्ति से वायुमंडल। तो हमारी वृत्ति बहुत श्रेष्ठ हो। उसके बाद में अगला भावनाएं। आज ही अपनी भावनाओं को क्या करना है, शुभ। क्या करना है भावनाओं को, शुभ करना है। इस पर हम योग का प्रयोग करेंगे थोड़ी देर में। अगला है कल्पनाएं, इमेजिनेशन, फैंटसीज, फैंसी। व्यक्ति एकांत में बैठ के कल्पना करते बैठता है, जिसने शादी कर ली है वो सोचता है वो जीवन कितना अच्छा था जब शादी नहीं की थी, और जिसने नहीं की वो सोचता है कब होगी मेरी भी शादी। जिसने कर ली वो सोचता है कहां गए वो दिन आजादी वाले, और जिसने नहीं की कहता है सबको कोई ना कोई मिल गया है, मुझे कब मिलेगा, मैं ही क्यों अकेला, हे प्रभु कोई भेज। एक पायलट ने अपना अनुभव लिखा था, वो पायलट हेलीकॉप्टर चला रहा था और उसका जो सेकंड इन कमांड था, उसका साथी, उससे कहता है देखो वो नीचे वो जो दिख रहा है ना ये हमारा गांव है, वो जो तालाब दिख रहा है ना ये मेरा गांव का तालाब है, इसमें मैं बचपन में बैठता था, कहां गए वो दिन, वो मुझे दिन याद आ रहे हैं, कितने हंसी खुशी के वो दिन थे। अब बड़ा हो गया है ना, हेलीकॉप्टर में पायलट है, वहां से देख रहा है नीचे तालाब, पर उसको एक दूसरी बात भी याद आती है। यहां पर वो कहता है वो बचपन के दिन कितने हसीन थे, कितने निश्चिंत जीवन था, केयर फ्री लाइफ, पर उसे और एक बात याद आती है, जब छोटा बच्चा था तब दुखी था कब मैं पायलट बनूंगा, जब भी हेलीकॉप्टर लाइट ऊपर से जाती थी तो सोचता था कब तक छोटे बन के रहना है, कब तक सुनता रहूं लोगों का, बड़ों का ये मत करो वो मत करो ये मत, मुझे बड़ा होना है और बड़ा होके मुझे पायलट बनना है, अभी पायलट बन गया तो सोचता है मुझे छोटा बनना है। ऐसा चक्र है मनुष्य के मन का, जो मिल गया वो नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। साइकिल जब तक थी कितने खुश थे, साइकिल से जाते थे, पर देखा पड़ोसी के पास में स्कूटर और हमारे पास साइकिल, हमें भी साइकिल स्कूटर चाहिए, परेशानी चालू हो गई, फिर स्कूटर आ गई, स्कूटर इधर आई तो उधर कार, स्कूटर में खुश थे परंतु उधर कार आने के बाद दुख बढ़ गया, फिर हमारे पास भी कार आ गई पर इधर कार आने के बाद उधर एसी कार, तो हमारी कार तो एकदम बैलगाड़ी जैसी दिखने लगी, खटारा, हमें भी वो कार चाहिए। मन इच्छाएं करते रहता है, उसको जो है अगर ये चाहिए ये मिलते ही ये व्यर्थ हो जाता है, अब दूसरा चाहिए, ये चाहिए, ये कितना अच्छा चमकीला है, हमारे घर में भी ऐसा चाहिए, हमारे घर में कब होगा ऐसा, घर में आ गया अभी ये गया काम से, अभी दूसरा दिख रहा है, वो ठीक दिख रहा है, मिलते ही वस्तु व्यर्थ हो जाती है, फिर दूसरी चाहिए जो दूसरे के पास है। यही मन का स्वभाव है। कल्पनाएं करते रहता है, तो अपनी कल्पनाओं को कैसे करना है, विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट कर देना है। विजुअलाइजेशन अर्थात क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, स्पिरिचुअल विजुअलाइजेशन। बाबा कहते हैं देखो अपने फरिश्ते स्वरूप को कल्पना करो, वो देखो कि मैं फरिश्ता हूं और इस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करूंगा। चार लोग बैठे और सबके सामने अपमानित कर दिए गए, एक फरिश्ता किस तरह से रिएक्ट करेगा उसका कल्पना करनी। अभी जैसे मैंने रिएक्ट किया क्या वैसा ही करेगा या और कुछ? लास्ट संडे की मुरली था सेल्फ फिल्म, अपनी ही फिल्म अपने आप को दिखाओ। वो धागा के बारे में उदाहरण दे रहे थे ना बाबा, धागा जुड़ता है टूटता है फिर गांठे हो जाती है तो कमजोर होता है। तो जब नाजुक परिस्थिति होती तो कैसे अपने ही अपने आप को दिखाना चाहिए। लास्ट संडे की मुरली याद है क्या कि बस गई, संडे पूरा हुआ, मुरली पूरी हुई, अब आगे का चलो। तो उसके बाद में स्मृति, अपनी स्मृति को शक्तिशाली बनाना है। जितनी स्मृति शक्तिशाली होगी वैसा ही स्वरूप होगा। स्मृति और स्वरूप एक साथ है। माता है सेंटर पर आई है, रोटी बेल रही है और अचानक बेलते बेलते बेटे की याद आ गई, आंखों में आंसू, स्मृति स्वरूप तुरंत कि ज्यादा टाइम लगता है, तुरंत जैसे ही स्मृति आएगी स्वरूप तैयार। स्मृति को शक्तिशाली बनाना है। और लास्ट 19 दो और बता देंगे। स्वप्न का क्या करें, हमारे तो हाथ में ही नहीं है। हाथ में क्यों नहीं है, जो सारे दिन भर किया वही रात में दिखता है। स्वप्न एक बड़ा टॉपिक है, पांच प्रकार के स्वप्न होते हैं, वो कभी और लेंगे। उसके बाद में 20वां तन, इस शरीर को क्या करेंगे इस शरीर के साथ, जो करना है अब करना है, क्या करना है इस शरीर के साथ। सबसे पहले इसको स्वस्थ रखना है। अगर कोई अपनी ही गलती से बार बार बीमार पड़ता है बाप दादा उसे ज्ञानी योगी नहीं कहते। पहला काम तो ये है। दूसरा काम, इस शरीर को भोग विलास में डुबोने के लिए नहीं है। ये शरीर ना तो हमारे भोग के लिए ना किसी और के। भोग विलास में डुबो नहीं देने में, इसको समय पहले ही बहुत कम है क्योंकि शरीर पहले ही उसको भोग विलास की ही आदत है, जन्म जन्म से डूबा रहा वो उसमें। तीसरा, इसे सेवा में लगा देना है, झोंक देना है सेवा में, दिन रात सेवा में लगा दो इसको। बहुत पाप किए है इसने, अब उसको धुलाई करनी है सेवाओं से। बहुत गुनेगार है ये उंगलियां, स्वच्छ करना है उंगलियों को, हाथों को। मुरलियां लिख लिख के पॉइंट्स लिख लिख के आंखों ने बहुत पाप किए है, अब भगवान को देख के देखते देखकर आंखों को शुद्ध करना है। अमृत वेला क्या करना है, बाप को आंखें फाड़ के देखना है। कैसे देखेंगे बाबा को, ऐसे आंखें बंद करके योग नहीं करना है। कई लोग आंखें बंद करके योग करते, पूरा आंखें पूरी बंद, कोई लोग ऊपर देख देख के योग करते हैं, बाबा को ढूंढते ऊपर। अगर आंख नींद आए तो क्या करो, अमृत वेला आंख में क्या डाल दो, तेल डालो, मुरलियों में आया है करना मत। तो सुबह सुबह उसको देखना है, उसकी किरणें इसमें आने देना है, ये आंखें शुद्ध होगी, कानों से उसके वचन सुनना है, ये हाथ लगा देना, ये पैर लगा देना है उसके सेवा में। ये शरीर ने बहुत पाप किया है, बहुत खींचा है। द स्पिरिट इज रेडी बट द फ्लैश इज वीक, बाइबल। अब इस फ्लैश को, फ्लैश प्लेजर से बाहर निकालना है। ये चमड़ी का सुख, ये चमड़ी का सौंदर्य ऊपर उठाना है। ये शरीर केवल दो ही काम के लिए दिया गया है हमको, एक सेवा, दूसरा तपस्या, दैट्स इट। दिस बॉडी इज नॉट फॉर द सेल्फ इंडल्जेंस, फ्लैश ग्रेटिफिकेशन, भोग विलास के लिए नहीं है। लास्ट 21, धन। धन का क्या करना है, धन का क्या करना है? कुंडली मार के बैठ गए कुछ कुछ, मेरा धन। भारत में कहावत है, जो बहुत लोभी होते हैं अगले जन्म में सांप बन जाते हैं, और क्या करते हैं अपने धन के ऊपर, ना खुद यूज करते हैं ना दूसरों को यूज करने देते। हमारा धन सबसे पहले तो, जो धन जो कमाया जा रहा है वो शुद्ध रीति से कमाया जाए, पवित्र धन हो, किसी का शोषण करके, किसी का नुकसान करके, दो नंबर से, करप्शन से, ऐसा धन बाबा की यज्ञ में नहीं लगता। लॉटरी, बच्चे बाप से पूछते, बाबा हम लॉटरी ले ताकि आपके यज्ञ में मदद हो सके? बाप कहते, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। बाय द स्वेट ऑफ thy brow thou shalt earn thy bread, मेहनत की कमाई चाहिए उसे। दूसरा, जो धन हमारे पास है उसकी प्लानिंग करनी है, वेल्थ मैनेजमेंट, कितना अपने लिए रखना है, कितना घर के लिए, कितना बच्चों के लिए, कितना फ्यूचर के लिए, सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड, कितना यज्ञ की सेवा के लिए लगाना है। आज की मुरली में है ना, तुरंत दान महापुण्य, तुरंत, एक है दान एक है महादान। सोचेंगे देखेंगे फिर कम कम होते जाएगी फिगर। मार्क ट्वेन ने अपना अनुभव लिखा है, इंग्लिश ऑथर, इंग्लिश पोएट, उसने लिखा है, एक बार मैं चर्च में गया, चर्च में बैठा और प्रवचन चालू था, पादरी प्रवचन कर रहे थे दान करने पर, पुण्य, और वो प्रवचन इतना प्रभावशाली था कि मुझे लगा आज तो बहुत सारा दान करना है, मुझे बहुत सारे पैसे मैं दूंगा आज, आज तक तो कुछ भी नहीं दिया चर्च में, अब तो मैं $50 दूंगा, सोचता है, क्योंकि भाषण चालू है, दान से क्या क्या होता है, टू गिव आल्म्स, क्या क्या फायदे होते हैं, भगवान कैसे खुश होता है जो दान देता है गरीबों को, और वो सोचता है $50 तो मुझे देने ही आज, बिल्कुल जेब में डाल के $50 बाहर निकाल के रखता है। भाषण पूरा होता है पादरी का, वो दान पेटी घूमती है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, पहली रो में घूमती है, सोचता है 50 थोड़ा ज्यादा ही हो गया, 40 इज ओके। दान पेटी सेकेंड रो में घूमती है, देखता है लोग कितना दे रहे हैं, अरे ये तो 20 और 30 ही दे रहे हैं, सोचता है ये 40 ज्यादा हो गया, 30 देता हूं। दान पेटी तीसरे रो में आती है, लोग कितना दे रहे, कोई तो 10 ही दे रहा है। उसकी रो में आती है उधर से दान पेटी, वो घूमती है ना उधर चर्च में ऐसे, तो वो देखता है अच्छा इसने $5 दिए, फिर सोचता है नहीं नहीं मैं $1 दूंगा, एक बहुत हो गया। और भगवान को, भगवान कभी पैसे थोड़ी मांगता है, भगवान को तो प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, निश्चय चाहिए, प्रेम। भगवान ने कभी कहा है मुझे पैसे दो? जीसस ने तो कभी नहीं कहा है। और जब उसके पास दान पेटी आती है, इधर उधर देखता है और वहां से ही पैसे निकाल लेता है। तुरंत दान महापुण्य, इसके लिए जब दान का संकल्प आया तो क्या करना, तुरंत डाल देना बस पेटी में। अभी ये मत सोचना बाद में देखता हूँ घर पे जाके थोड़ा हिसाब विसाब करता हूँ, तब तक कुछ और ही हो जाएगा। यहाँ तो 15-20 मिनट में ये सब हो गया। मार्क ट्वेन ने लिखा, आई जस्ट वंडर व्हाट हैज हैपेंड टू मी, आई जस्ट डोंट नो व्हाट इज दिस, हु वाज दैट पर्सन हु थॉट हु हैज टू गिव एंड हु इज दिस पर्सन हु इज थिंकिंग दैट ही हैज टू होल्ड। मुझे ही कुछ समझ में नहीं आया ये क्या हो गया। बट दिस इज द वे द माइंड वर्क्स, दिस इज द माइंड ट्रिक्स। चालबाज है मन, माया महाठगनी हम जानी, कबीर कहता है। बहुत ठग करती है, ठग देती है बैठे बैठे। तो कितनी बातें हो गई, 21। कब करनी है देखेंगे, बाद में सोचेंगे। अभी तो पॉइंट्स डायरी में लिख के रखिए। अभी रूम पर जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, टाइम मिला तो देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, प्लान बनाएंगे। जो करना है अब करना है, अभी करना है। फिर से रिवाइज करते एक बार, ज्ञान आज ही भरना है, योग शक्तिशाली स्टेज, धारणाएं मजबूत, सेवा दुआए, प्यूरिटी 100%। टारगेट रखना है 100% प्यूरिटी का, नॉट इवन 1% लेस, 100% ब्रह्मचर्य, 100% प्यूरिटी। नेक्स्ट संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, चलन। नेक्स्ट बुद्धि, संस्कार। नेक्स्ट दृष्टि, दृष्टिकोण, वृत्ति। नेक्स्ट भावनाएं, कल्पनाएं, स्मृति, स्वप्न। नेक्स्ट तन, ये शरीर। और लास्ट धन। तो ये 21 की 21 बातें आज के आज ही करनी है। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, भावना का रह गया वो अगली क्लास में लेंगे। 5 मिनट का ब्रेक देंगे, अभी पहले गीत बजेगा, योग करेंगे। 5 मिनट्स के विदिन 5 मिनट्स सबके सब वापस आ जाना है। तो नेक्स्ट क्लास हम लेंगे प्रभु प्रेम की सरिता। ओम शांति।
भगवान चेतावनी सुना रहा, समय बीतता